कोई चीज अपना प्रिय होता है अपने लिए, और ब्रजवासियों का प्रिय होता है किस लिए? कृष्ण के लिए। वो कभी कभी कृष्ण से भी अधिक उनकी वस्तुओं का आदर अधिक आदर करते हैं, तो ये वहां पर उचित कृष्ण के संबंध में। अर्थात समस्त व्यवहार अचिंत अद्भुत शक्ति के द्वारा अपने आप सब वस्तुओं का निर्वाह हो रहा है। उनका काम जितना है सब प्रेम के द्वारा व्यवहारित होता है, प्रेम ही उसका मूल कारण। और वह कृष्ण के प्रति प्रेम, अपने लिए कुछ नहीं होता, देखने में मालूम होता है। गोपियां कंघी से अपने मस्तक को सवार रही हैं। कृष्ण का जन्म हुआ और सब गोपियां सज धज करके, गोपलोक सज धज करके आए, श्रृंगार करके, बड़ी अंगरखा। अंगरखा किसको कहते हैं? अंगरखा जानते हैं आप? तो ब्रजवास के रहने वाले। अंगरखा कहते हैं
बड़े बड़े जामा,
जामा कुर्ता,
बड़े बड़े जामा,
रस वो बांधते हैं उसको, पगलबंदी जैसे वो अंगरखा, रेशमी के बड़े सुंदर ठाट से जरी लगी हुई और बड़ी बड़ी पगड़ी बांध करके और सोने की मालाएं धारण करके आते हैं, बन ठन करके आते हैं। क्यों बन बन ठन करके आते हैं? अपना श्रृंगार कर, किस लिए? ये स्वाभाविक उनका हो जाता है, उसके मूल में कृष्ण है। कृष्ण नहीं रहते थे ये सब नहीं करते, इसलिए उनका चलना फिरना उठना बैठना सब कृष्ण के लिए है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब किस लिए? सब अपने लिए है, इसलिए वहां पर स्वार्थ है। जो इन कथाओं के द्वारा सब स्वार्थ छोड़ करके कृष्ण को सेंटर बनाएगा तो कृष्ण की भक्ति प्रवेश करके सांसारिक आसक्ति मोह सब दूर होगा। इसीलिए कह रहे हैं प्रपंच पांच चीजों में, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श में सब लोग ये फंसे हैं। इनका तो ये मोह और ये क्या बेड़ी और हथकड़ी और राग क्या है? बंधन का कारण है। और वहां भी अरे जिसके चरणों के भक्ति के आभास से ही प्रपंच दूर हो जाता है, क्या होगा? जिनके चरणों की भक्ति के आभास से ही राग प्रपंचगत जो अनुराग है मोह है ये सब दूर हो जाता है और वो आप ब्रजवासियों के सहित इस जगत में प्रपंच के अनुकरण करते हैं, अर्थात प्रपंच जैसी लीलाओं को करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होगा? प्रपंच रहेगा, अभी प्रपंच है। उन लीलाओं की कथा श्रवण मात्र से भी ये प्रपंच दूर हो जाएगा। हाथों को आपके प्रत्येक वस्तुओं के प्रति प्रसाद बुद्धि रहती है, सोचते तो नहीं है किंतु सब उनका हृदय में उनके स्वभाव में ऐसा होता है, सब कुछ को प्रसाद बुद्धि करते हैं। और उन वस्तुओं के प्रति उनका अनुराग होता है, इसीलिए सभी द्रव्य और तत्प्रति राग इत्यादि से उनकी भजन भजनानंद माधुरी विस्तारित करने के लिए कृष्ण ऐसा करते हैं। किसी भक्त ने एक मयूर पंख देखा, क्या किया? हृदय गदगद हो गया, उसको लेकर के रखा, कभी सिर पर रख रहे हैं कभी हृदय में रख रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं?
तदीय
उनका उस वस्तु के प्रति अनुराग है कि बहुत सुंदर है? नहीं,
तदीय वस्तु।
इसी तरह से यहाँ की कोई भी जमुना के प्रति उनका आदर है, गिरिराज गोवर्धन के प्रति आदर है, समस्त वस्तुओं के प्रति उनका स्वाभाविक अनुराग हो जाता है। इसलिए ऐसे जो ब्रजवासी हैं, क्या कभी आपसे उनसे ऋण हो सकते हैं? आपके प्रति भी, आपके वस्तुओं के प्रति अनुराग रखने वाले ब्रजवासियों के प्रति आप कभी भी ऋण नहीं हो सकते। जानंत एव जानंत किं भक्त्वामेन मैं प्रभो मनुष्य वक्षो वाचो वैभवं प्रभो। आप उपसंहार कर रहे हैं, पहले प्रारंभ होता है और इसके बाद में उपसंहार,
उपक्रम उपसंहार,
उपक्रम
उपसंहार, उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए। इन्होंने आरंभ कहाँ से किया? आरंभ किया ज्ञाने प्रयास मुद्दपाषण मंतव जीवंत सन्मुखरिता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता तनुवांग मनो भी प्रायशो अजित
जीतो
अपि असित रही त्रिलोक। त्रिलोक में जो अजित हैं वो भी विजित पराजित हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। किसके द्वारा? ज्ञाने प्रयास मुद्दपाष्य, ज्ञान के प्रयास को, ईशत प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास न करते हुए आपकी लीला कथाओं में तन मन वचन सब प्रकार से प्रणति करते हैं। और स्थानीय स्थिता जिस स्थान में है, गृहस्थ हो, त्यागी हो, ब्रह्मचारी कोई भी हो, अथवा अपने स्थान में रह करके हम लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उन लीला कथाओं के द्वारा ज्ञान का प्रयास नहीं करने पर भी जीत लेता है। किनको?
अजित
जो भगवान है त्रिलोक में, उनको भी ये जय कर लेता है हरि कथाओं के माध्यम से, ज्ञान के प्रयास के द्वारा नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जानंत एव जानंत, आपके महिमा को जानने के लिए जो प्रयास करते हैं वो प्रयास करें, और वो कहें कि मैंने उनको जान लिया, किं भक्ता मैं और क्या कहूं, हे प्रभो मैं मनुषो बपुषो बाचो, मैं मन वचन और शरीर के द्वारा तो वैभवम न गोचर, तुम्हारे वैभव को मैं नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। वो लोग कहते हैं कि जान लिया, यहाँ पर ज्ञानंत माने ज्ञान से हुआ, ज्ञाने प्रयास इत्यादि और भी कहा है, और भी उन्होंने कहा है से जाने जेह देह जनाए, वही जानेगा जिसको आपने जना दिया। ये ब्रह्मा जी उसी के लिए कहते हैं, कौन सा श्लोक? अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशान, भगवान की आपकी कृपा प्रसाद से ही आपको कोई जान सकता है, कोई भी उनको ऐसे नहीं जान सकता, अपने से तो भगवान को जान ही नहीं सकता, यदि भगवान ने जना दिया तो जान सकता है, और जितना जनाएगा उतना ही जानेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं मुझे ज्ञान हो गया, मुझे वैराग्य हो गया और भगवान की महिमा को जान लिया, क्या भगवान तो मुक्ति को भी दे सकते हैं, ये प्रपंच है और वो चिन्मय, हमको आत्मा का ज्ञान हो गया, मुझे आत्मानंद मिल रहा है, और मैं ब्रह्मानंद को अनुभव कर रहा हूं, मैं सब कुछ जान लिया, भले ही वो कहें। अथवा ज्ञान का फल क्या है? मुक्ति, मुक्ति के लिए योग्य हो गए हैं, संसार में आसक्ति सब दूर हो गई है, ये लोग कहें जैसे हाँ हमको सब कुछ मिल गया। तो ये जानन तो कहां हुआ? तीन, पहला संसार में वैराग्य, ये सब जड़ वस्तु है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी भी अनुभूति जरूरी है। दूसरा, प्रभु को मैंने जान लिया, वो निर्विकार निर्विशेष है, मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ चीज है, मैं प्रभु को जान लिया, वो सच्चिदानंद है, उनका कोई रूप नहीं है, भाव मात्र है, मैंने जान लिया। तो कहते हैं कि ऐसे जानने वाले कहते रहे कि मैं जान लिया, अर्थात उनकी विडंबना, वो विडंबस भूतले है ना, वो विडंबना यहां लगाओ, वो विडंबना मात्र है, वो नहीं जानती, आप जानते हैं तो जानते रहे, हमको कोई उसे तात्पर्य नहीं। किंतु मैं उनको, हे प्रभो, मैं मन से वचन से और शरीर से आपके वैभव को नहीं जान सकता। यहां पर वैभव माने क्या? वैभव माने होता है विभूति, ब्रह्मा कृष्ण की विभूति है ना, गोकुल ये कृष्ण का वैभव है, कृष्ण स्वरूप है, गोकुलवासी कृष्ण के वैभव है, भक्त जितने हैं वो कृष्ण के वैभव हैं, भगवान की महिमा महात्मा ये सब भगवान की भगवान की भक्ति भगवान का ये जितनी भी चीजें हैं ये सब वैभव में से एक को भी मैंने मन के द्वारा शरीर के द्वारा वचन के द्वारा मैं नहीं जान सका। और आप कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं, आप सच्चिदानंद हैं। आपके मानसिक चेष्टा, मानसिक क्रिया, बहु की क्रिया और वचन की क्रिया, वचन की भंगी मैं कभी भी नहीं जान सका। ये भी पहला हुआ अपना, फिर दूसरा हुआ कृष्ण का। न मे प्रभो तव मनसो बपुसो बाचो वैभव, तव वैभव, ये मन का जो वैभव है, वचन का वैभव है, वाणी का वैभव है। वाणी का कैसे? कृष्ण कह रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं सखाओं को, गैया खोज बछड़े खोजने के लिए मैं जाऊं, तुम लोग बैठे रहो, ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। वो उसका क्या तात्पर्य? कृष्ण खोजने के लिए इच्छा करते तो ऐसे खोज नहीं लेते। तो उनकी इन लीलाओं को जो कृष्ण वचन के द्वारा लीला कर रहे हैं, जो सदा मैया उनको बांध रही है बपू की हुई, आपकी जो बपू का जो वैभव है, जो सुधा मैया बांधते बांधते नहीं बांध सकी, कृष्ण इतने पतली कमर नहीं बन सकी, रस्सी लंबी होती गई, इस लीला को कोई समझ सकता है कैसे ये हो गया? ये हुआ इसके द्वारा, वचन के द्वारा। मैया मैंने मट्टी नहीं खाई, मैं नहीं माखन खाए, मैंने चुरा करके मक्खन नहीं खाया, चुरा करके खा रहे हैं और कह रहे हैं मैया मैंने कब खाया। ये वचन में क्या चातुरी है, क्या विविधता है, इसको नहीं समझ। और मन वाला गोपियों के साथ में जो आदान प्रदान हो रही है ना बातों की, मन की भावनाओं को, घर में चली जाओ पतियों की सेवा करो, कृष्ण कैसे मन की भावना से करें जो घर चली जाओ, करें सचमुच चली जाओ ना तुम मत जाओ, ये मन की भावनाओं को, ये तीनों चीजों को मैं समझने में असमर्थ हूँ आपकी, ये सब जो आपके वैभव है। तो अब ना गोचर, इसको कल मैं मतलब आज यही तक रहे, फिर रात कल से मैं 4:30 बजे आरंभ करूंगा, 4:30 बजे कल, तो बल्कि 4 बजे से ही वो श्लोक बच्चों का सुनूंगा।
गौरचंद्र राधिका जय सदा प्रजंतमुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकार्तव्याजुहाव पुत्रेति तन्मे तया कर्मो विनेतु तं सर्वभूतविदन्महिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि महिमां त्वयाधिना इति विद्मे राजभूतं धर्मान्
रूप सनातन को शिक्षा दी और दक्षिण प्रदेश में गए ईसा ब्रह्म भट्टाचार्य जी को, ए प्रकाशानंद सरस्वती को, जहाँ जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, भागवत है, गीता है, चैतन्य चैतामित्य इत्यादि, उसको उन्होंने तीन भाग में बांट दिया, संबंध, अविधेय और इसी के लिए हमारे मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, गौड़िया वैष्णव को तीनों ने आत्मसात किया है, अर्थात इन्हीं तीनों के उपासना हमारे रूप उपासना। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आधुनिक युग के भगीरथ भक्ति रूपी गंगा को आनयन करने वाले भगीरथ, इन्होंने गीता में, भागवत में, महाप्रभु जी के उपदेशों में सर्वत्र ही 10 मूल शिक्षा का आविष्कार किया। 10 मूल
इन शिक्षाओं को जो समझ करके इसके अनुसार में जो आचरण करेंगे भव सागर को अनायास ही पार कर, भव व्याधि दूर हो जाए। दशमूल एक वैद्यकों की आयुर्वेद की दवा है,
दशमूलारिष्ट
भी है। और दशमूल एक ऐसे ही चूर्ण होता है, मधु इत्यादि के साथ में सेवन किया है, सब रोग तो सब दूर। वैसे भव रोग ये जो लगा हुआ है ये दूर हो जाएगा, और साथ साथ में उसकी उसका पथ्य भी है। साधारण तरह से जैसे गाय का दूध है, ये पथ्य भी है औषधि भी है, ऐसे ये पथ्य भी है और औषधि, दवा भी है औषधि भी है, दोनों का पुष्टिकारक भी करती है। कहा जो हमने कहा था ये सब लोग ठीक करके आना दशमूल के संबंध में। हम लोगों के जीवन में जो कर्तव्य है जिसके द्वारा निर्धारित होता है, अपहांत रूप में प्रतिपादित होता है, इसको प्रमेय कहते हैं। और शास्त्र सब अपहांत प्रमाण जिसको प्रमाणित करते हैं उसको कहते हैं प्रमेय। प्रतिपादित एक होता है जिसके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है किस चीज़ का, तो भगवान क्या है, जीवन क्या है, कैसे हम आए, क्या है, इस सब विषयों के लिए जिस विषय में हमारी उत्कंठा उसको जानने के लिए हम लोग जानना जिसको चाहते हैं वो जिसके द्वारा प्रतिपादित होता है उसको कहते हैं प्रमाण। और ये प्रमाण द्वारा जो प्रतिपादित होता है उसको कहते हैं प्रमेय। जैसे इस विश्व ब्रह्मांड का नियंता कौन है, किसी ने कह दिया प्रकृति है, किसी ने कह दिया अपने आप हो गया, किसी ने कहा कि प्रकृति और पुरुष मिल करके जगत को प्रकट करते हैं, किसी ने कहा ब्रह्मा जी करते हैं, किसी ने कहा जो शंकर जी करते हैं, किसी ने कहा नारायण करते हैं, किसी ने कहा जो भगवान कृष्ण करते हैं, तो हम किसकी बात माने। जिसमें भ्रम प्रमाद करना पाठव और विप्रलिप्सान दोष नहीं है, जो अभ्रांत सत्य को प्रकाश करता है उसी को हम माने। हम जानते हैं कि हमारी माता पिता कौन है, हम नहीं जानते, कोई जानता है, कोई नहीं जानता जी हमारे माता पिता कौन है, तो हम कैसे कहेंगे जी वो मेरे माता पिता हैं। कोई अभ्रांत सत्य होना चाहिए, मैया झूठ नहीं बोलेगी, पिता बाप नहीं झूठ बोलेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं हम ही से तुम पैदा हो तो मान लो। ऐसे ही ये श्रुतियाँ जो हैं माता के रूप में हैं, इनके वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा, किंतु सब श्रुतियों को नहीं। हमारे गुरु परंपरा में स्वीकृत जो वेद उपनिषद पुराण महाभारत रामायण और उसके अनुगत शास्त्र हैं जो माने गए हमारी गुरु परंपरा में, वो अभ्रांत सत्य है, और नहीं तो बाकी में प्रक्षिप्त है, कुछ लोग इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए शब्द प्रमाण ही सबसे शास्त्र सबसे, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। आमनाय भी कहते हैं, आमनाय माने गुरु परंपरा में पहले से जो आ रहा है ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक। गीता में कोई चीज प्रक्षिप्त नहीं है, कोई भी आदमी उसमें दो एक श्लोक भर दें ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हमारे गुरु परंपरा में सबसे पहले बतलाया जाए इसमें इतने श्लोक हैं, कौन कौन श्लोक हैं, उसकी प्रतिलिपि होती आई है और आज भी वैसा ही चल रहा है। इसमें कोई यदि इधर से कोई घटा बढ़ा दे वो मालूम हो जाएगा, इसलिए घटाया बढ़ाया हुआ हम नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? हमारी गुरु परंपरा ने जिसको वेद उपनिषद शास्त्र को स्वीकार किया। ये हैं चार वेद, हैं चार कौन कौन, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद हैं तीन, एक ही वेद है अथर्ववेद ही वेद है, इसी को ब्रह्मा जी ने पढ़ाया अपने पुत्र को, वही वेद प्रमाण है। किंतु पीछे से व्यास जी ने इसको तीन खंड और बना दिया, उसी को विषय के अनुरूप लेकर के बना दिया। जो बाकी रह गया वो अथर्व कहलाया, और बाकी जिसमें स्तुति उसमें से निकाल कर कर कि वो शाम हो गया। यज्ञों का विधान विधेय ये सब और उसके लक्षण इत्यादि सब बतलाए, ये यजुर्वेद हो गया। और
मंत्र प्रधान है
तो ये ऋग्वेद सामवेद ये तीन बने, और जो बाकी रह गया वो अथर्व का ये चार वेद। इसलिए वेद त्रयी कहते हैं, ये तीनों ही वेद हैं। इसके बाद में महाभारत और रामायण है और उपनिषद हैं। ये सब प्रमाणों में गुरु परंपरा ने हमारे श्रीमद्भागवत को प्रमाण श्रेष्ठ माना, अमल प्रमाण माना, मूल प्रमाण माना। सब जो एक कहते हैं किंतु भागवत जो कहेंगे वही प्रमाण मानिए। ये प्रमाणों में अमल प्रमाण है, इसलिए क्यों इसमें कोई दोष नहीं है। दोष कितने होते हैं? भ्रम, हम लोगों को भ्रम है कुछ जो कुछ कहेंगे। नाना ऋषि लोग हैं नाना प्रकार के, मतलब उनमें भ्रम हो सकता है। व्यास ने में भ्रम नहीं, क्यों वो भगवान है नारायण, उन्होंने इसको प्रकाशित किया। बैठ जाओ,
जाओ बैठ।
कैसे जितने आदमी हम खाते हैं ना, जब टट्टी करते हैं तो सब अपवित्र है, किंतु गाय का गोबर अपवित्र नहीं है, वो पवित्र करते हैं। क्यों? हम लोग उसको निर्णय नहीं, वेदों में भगवान ने निर्णय करके दिया, उसके सब क्रिया के द्वारा ही काम होता है। बहुत से ऋषि आचार्य लोग हो गए, अपना अपना मत बतलाया किंतु पूर्ण नहीं। व्यास जी ने इस भागवत को प्रकाश किया, ये सब कहीं कहीं पर लिखा है श्रुतियों में और पुराणों में, श्रुतियों में और उपनिषदों में यदि झगड़ा हो तो किसकी बात मानेंगे?
उपनिषद।
पुराणों में उपनिषद में हो तो श्रुति को ही, किंतु भागवत को सर्वर के लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर मानेंगे, प्रमाण। इसमें भ्रम नहीं है, प्रमाद नहीं है। कर्णपाठ माने इंद्रियों की अकुटता, दस यहां से श्वास दूर से सुनो। अरे महाराज जी ने ये बात कही, हमने वो बात कही नहीं, उसको न न सुन करके उसने कहा घर जाना मत, उसने सुना घर जाना, महाराज जी ने तो कहा कि घर जाना, किंतु मत वाला है जरा धीरे से कहा वो उसको नहीं सुनाई पड़ा। तो वो ये इंद्रियों की अपटता है, हम पीछे नहीं देख सकते, आंखें आंखों को नहीं देख सकते, इसलिए भ्रम प्रमाद। भ्रम माने उठ, जैसे ही उठे नींद से, एक बात को दूसरी बात, कोई मदिरा पान कर दिया एक बात को दूसरी बात से वो कर, भ्रम प्रमाद कर्णपाश कर्णपाठ और विप्रलिषा माने वंचन करने की इच्छा। शंकराचार्य जी ने वेदों का चार प्रमाण दिया, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म तत्तमसि। उन्होंने क्या किया? वंचन के वंचन अपने मत को प्रतिष्ठा करने के लिए उन शास्त्र के वचनों का दूसरा अर्थ कर दिया। तत्त्वमसि तुम भी वही हो, अर्थ उन्होंने ये किया, तत्त्वम तुम भी वही हो। किंतु इसका यथार्थ अर्थ ये नहीं है, लोगों को धोखा देने के लिए अपने मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने सुना तस्य तम अस्मि तुम उसके हो, ये इसका अर्थ होगा। अर्थात प्रभु ही एकमात्र मालिक है, हम उसके। गीता में भी ऐसा तो बतलाया ना, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, वेदों में सबसे मैं ही जानने योग्य। तुम और हम है एक ही हो गए, वही यदि हो गया तो तब तुम क्यों नहीं जानता ब्रह्म के संबंध में? इसे लोगों को धोखा दिया किस लिए? अपना वेद दीप मत प्रचार करने के लिए। क्यों? भगवान ने कहा जो विषय लोगों को, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं असुर लोगों को प्रवंचना करने के लिए, कहो तुम ही ब्रह्म है, ब्रह्म कोई दूसरा नहीं, इसलिए बहकाने के लिए। ये वंचन इच्छा, इसलिए। और भी जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, इसका अर्थ क्या लगाया? कहीं कहीं पर शास्त्रों में, अधिकांश रूप में साहित्य में कुछ उत्प्रेक्षा होती है, अर्थात तुम सिंह के बच्चे हो, महाराणा प्रताप सिंह था, तो उसके नाखून थे, चार पैर थे, जानवर था वो तो गुणों के लिए था। तुम गधे हो, किस लिए गधा कहा गया?
निर्बोध,
बुद्धि कम है, इसलिए वो गधा जैसा काम नहीं हो गया, दुम नहीं हो गई, वो शरीर नहीं हुआ, किंतु कहा गया। तो तुम भी अहम ब्रह्मास्मि है, ब्रह्म माने वो चेतन है, विभु है, और मैं अणु अनुचेतन, इसलिए कहा गया, उपमा के रूप में कहा गया। यथार्थ में कभी भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, भगवान के समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कृष्ण के समान कोई कृष्ण हो सकता है? जब द्वारकाधीश और मथुरेश कृष्ण ही उनके बराबर नहीं है, ब्रजेंद्र नंदन के समान एक ही तत्व होने पर भी, तो साधारण मनुष्य कृष्ण बन जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सभी ब्रह्म। शंकराचार्य ने इसका उल्टा अर्थ लगा दिया, सभी जितने हैं ब्रह्म है, ब्रह्म माने यहाँ पर चेतन पदार्थ है, ये अर्थ है उसका। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा इत्यादि में उसके आठ गुण जिनमें है उनको ब्रह्म कहते हैं। जीवन और मन की समस्या को जो जानते हैं और हल कर सकते हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर सब कुछ ब्रह्म है, इसका मतलब जैसे स्वरूप से वो चिन्मय, बस इतना है। इसलिए वंचन की इच्छा से भी वचनों का उल्टा किया जाए तो वो प्रमाण्य नहीं है। इसलिए अभिधा वृत्ति से हमारे गुरु परंपरा की धारा में जिन जिन वेदों को, जिन जिन शास्त्रों को प्रमाण्य के रूप में लिया गया, उसमें श्रीमद् भागवत प्रधान है, ये सब मात्र प्रमाण है। ये जो कहेंगे वही हम करेंगे। इसलिए ईश्वर के संबंध में क्या कहते हैं, जीव के संबंध में वो क्या कहते हैं, जगत के संबंध में क्या कहते हैं, ये तीन ही चीज है, तीन ही तो वस्तुगुण है। ईश्वर के संबंध में वेद पुराण और अमनाय में पाने वाले जो हमारे शास्त्र हैं, शब्द प्रमाण, वो क्या कहते हैं, वही हमारे लिए मान्य, दूसरा नहीं। जीव के संबंध में वो जो कहेंगे वो हमारे लिए मान्य, और संसार के संबंध में जो कहते हैं। शंकराचार्य जी यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, कहते हैं कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तो फिर वो कहते हैं जीवो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, तो फिर वो क्यों कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सभी ब्रह्म है तो सभी सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और जगत मिथ्या है, तो फिर ये सर्वम खलु इदं ब्रह्म कैसे हो गया? इसलिए उनके बातों में सामंजस्य नहीं, इसलिए हम उनकी बात को नहीं मान करके हम शास्त्रों के और भागवत के विषय को। तो ये हुआ, पहला हुआ प्रमाण, जिनके द्वारा ज्ञातव्य वस्तुओं का प्रतिपादन होता है उसे कहते हैं प्रमाण। जो कुछ हम जानना चाहते हैं हमारे लिए जो ज्ञातव्य है, जो हमारे लिए जानने योग्य है, उस विषय में जो प्रतिपा जिसके द्वारा प्रतिपादित होता है वस्तु का, उसको कहते हैं। और प्रमाण के द्वारा जिस चीज वस्तुओं का प्रतिपादन किया जाता है उसे कहते हैं। अब हम लोग प्रमेय पर चलते हैं। प्रमेय में पहला है हरि ही, बोलो नवीन बोलो, वही हरि उसका समस्त शास्त्रों में प्रमाण है। तो इसलिए यहाँ पर हरि व्याकरणोक्ति अर्थ में विष्णु,
किंतु भागवत को प्रमाण मूल माना है, इसलिए भागवत ने कहा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान सह, इसकी परिप्रेक्ष्य में सब चीज को हमको ले।
लक्षणा
नहीं, भागवत स्पष्ट करते हैं
अभिधेयी में कहा
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान, ये तो अविधा नहीं कहा गया।
ये तो नहीं, तो क्योंकि ये जिस इसी जो श्लोक में जो अमना प्राहो तत्तम हरि में हरि शब्द क्यों,
भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ। हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जितना प्रमाण दिया है सब कृष्ण के, क्योंकि बड़े चित्त को आकर्षण करने वाले हैं।
मेरा कहना है कि कृष्ण शब्द दे दे तो उसमें क्या
छंद पतन होगा,
क्यों दे रहे, क्यों दे, उनको कृष्ण से लेकर विष्णु तक के तत्वों को उसमें लाना है, वो देंगे तो वो ठीक नहीं है। यहीं से विष्णु तत्व पूरा एकदम शेष से आरंभ कर हमारे साक्षी जो परमात्मा है उनसे विष्णु है वहां से लेकर और कृष्ण तक के समस्त तत्वों को उसके अंदर में लाना है, कृष्ण का निषेध नहीं होगा।
तो हम तो प्रमाण दे रहे हैं कृष्ण ही परम तत्व
दे रहे हैं, किंतु वहां पर सब कुछ समझाना है। इसलिए दार्शनिक शब्द में ब्रह्म शब्द का, हरि शब्द का, परमात्मा रूप में ये सब का वर्णन किया, इसलिए वेदांत में कृष्ण का नाम नहीं, इसीलिए वहां पर ब्रह्म ब्रह्म शब्द में जीव ब्रह्म माया ये सब, किंतु प्रतिपाद्य वेदों का भी प्रतिपाद्य वह कृष्ण, इसलिए जहां पर जैसे जरूरत होती है वहां पर वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष के संबंध में हमने जो प्रश्न किया, प्रत्यक्ष क्यों नहीं प्रमाण है, इसलिए अचिंत्या खलु जे भावा नौतांस तर्के न दूर, इस संसार में तो जरूर इसको लेना पड़ेगा प्रत्यक्ष, इसके बिना काम नहीं चल सकता, किंतु परमार्थ विषय में चेतन जो वस्तुएं हैं जीवात्मा परमात्मा इत्यादि और भक्ति इत्यादि के संबंध में ये प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करेगा। इसलिए अचिंत्या खलु ये भाव, अचिंत्य जो भाव है, चिन्मय जो भाव है सच्चिदानंद, उसमें प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ये सब भ्रम प्रमाद करना पाठव विप्रलिप्सा इत्यादि दोषों से युक्त होने के कारण ये सब प्रमाणित नहीं हो सकते, संभव से दोष। इसलिए यदि हम न्याय के अनुगत ये हों तो उसको लिया है, बस इतना है, और भी लौकिक विषयों में प्रत्यक्ष कुछ लिया है, पारमार्थिक विषय में तो कोई काम ही नहीं। ब्रह्मा तक कहते हैं कि ज्ञान उनते ही हो जाना, आंखों से कृष्ण को देखा किंतु उनको नहीं देख सके, इस विषय में आज यही तक इसको किम भक्ता न मे प्रभो मनुष्यो बहुशो वाचो वैभव करो जानते एव जानन्ति। ज्ञानी लोग हैं, कर्मी लोग हैं, ये लोग कहते जो मैंने जान लिया वो कर्म फलदाता है, ज्ञानी लोग कहीं नहीं जो मुक्ति को देने वाला, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो वो लोग जाने तुच्छ के रूप में बताए, मैंने कुछ भी नहीं जाना। किन भक्त है मैं और अधिक क्या कहूँ, प्रारंभ से बतलाया श्रेयाशीति भक्ति उद्देश्य थे विभो क्लेश केवल बोध अलग, जो आत्मा के बोध के लिए, आत्मबोध के लिए जो चेष्टा करते हैं वो कैसा है, जैसे भूसा को कूटने से चावल या अन्न खोजता है कोई, भूसा यदि लाख वर्ष तक उठे लाख मन भूसी भूसा तभी एक दाना भी कण का नहीं आएगा, जिसमें कण है चावल है उसको थोड़े प्रयास से ही उससे अन्न निकलेगा, इसमें है ही नहीं है। तो आत्मबोध से जीवों का कोई भी कल्याण नहीं होगा। आत्मबोध माने क्या है, मैं चिन्मय तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्यों, यदि भगवान को जान लिया तो अपने आप सब जगत को तस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति। सूर्य यदि निकले तो सूर्य को भी देख सकते हैं, समस्त जगत को देख सकते हैं, अपने को देख सकते हैं। और सूर्य न निकले तो लाइट जला करके हम देखेंगे, इस लाइट के द्वारा सूर्य को नहीं देखेंगे। आधी रात में यदि हमने लाइट जलाया 1,00,000 तो उसे सूर्य नहीं देखेंगे और जगत को भी संपूर्ण रूप में नहीं देख सकेंगे। इसलिए सूर्य के प्रकाश से सूर्य को, अपने को और दूसरों को जैसे देख लेते हैं, वैसे भगवान को जानने से तस्मिन् विज्ञाते, उनको जानने से उनको भी जानना हो जाएगा, अपने को भी जानना होगा और दूसरों को भी जानना हो जाएगा। भक्ति के द्वारा जो भगवान को जानते हैं वो तो सबको जान लेंगे, और ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी ये भगवान को एकांश में भी नहीं जाने। वो हाथी के समान, जैसे 4 अंधे थे तो 4 अंधे रास्ते में खड़े थे, किसी ने कहा कि हाथी जा रहा, भाई कैसा हाथी है? तो एक आदमी ने कहा कि देखो ये पूछ पकड़ो, देखो ये हाथी का पूछ है, हाथी है। एक को कहा जैसे ये
कान पकड़ो,
एक कान पकड़ो, देखो ये हाथी है, और कहा ये कान सूंड पकड़ो, और एक को कहा दांत, और एक को कहा कि कान। तो जो कान पकड़ा उसका ये हाथी सूप के समान है, और दांत पकड़ा उसने मूसल के समान हाथी होता है, और पैर जिसनों का जो खंभे के समान में हाथी होता है, और पूछ पकड़ा
सांप के समान,
कैसा
सांप
के समान हाथी होता है। और जिसकी आंख थी उसने देखा, उसने हाथी को देखा, देखा क्या उसका मुंह के अगले भाग में सूंड होता है, उसके 4 पैर होते हैं वो खंभे के समान होते हैं, कान के समान उसका सूप होता है, सूप के समान उसका कान होता है, और सब के समान में पीछे में उसकी पूंछ होती है। यह सब मिलाकर के काला एक जंतु जो इतना लंबा चौड़ा होता है इसको हाथी का न। तो ज्ञानी योगी कर्मी तपस्वी ये सब अपने अपने अनुसार से ब्रह्म की परिभाषा देते हैं, किंतु वो अधूरी है। और भक्त लोग कहते हैं नव किशोर नटवर
लोकवेश
वेणुकर, ये ब्रह्म है। हाथों में बंसी, अधरों में बंसी विराजमान हुई है, मोर मुकुट झलक रहा है, प्रादिव्य में के समान श्यामल वर्ण जिनका है, विद्युत के समान जिनके पीताम्बर है, बनमाला पहने मुस्कुराते हुए बंसी वादन कर रहे हैं, ये पाठ नराकृति ये ठीक है। इन्हीं के अंग ज्योति को ब्रह्म कहते हैं, इन्हीं का एक अंश जो जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप से परमात्मा कहते हैं, साक्षी नियंता वो है। इन्हीं का एक रूप है जो विष्णु के रूप में है, उनका एक और प्रकाश है जिसको कर्णाभिशाही कहते हैं, उनका वैभव रूप है वो है नारायण, उनका वैभव एक और स्वरूप है जिसको कहते हैं बलदेव, ये सब उन्हीं के प्रकाश, किंतु स्वयं रूप में वो परब्रह्म जो है नराकृति नटवर वेश मुरली धारण के हुए कृष्ण, ये कौन कहता है? इसलिए भक्तों का कहना है तो ठीक है। तो कहते हैं जानन थे, वो लोग ने कहा जान लिया जान लिया जान लिया, कुछ भी नहीं जान, किन भक्त का मैं क्या कहूँ, मेरे 4 शरीर शीर हैं, मैं वेदों का वक्ता हूँ, समस्त शास्त्र मुझसे प्रकटित हुए, ये भागवत में उन्हीं से हुआ चतुर्श्लोकी के रूप में, नारद जी को नारी से प्यार, इसलिए मैं किंतु हे प्रभो, मैं हे प्रभो, प्रभो माने क्या है? प्रभो प्र माने प्रकृष्ट रूपेण भू भवती, जो प्रकृष्ट रूप से अपने रूप को अपने गुणों को अपने चिन्मय शरीर को उस जगत से इस जगत में प्रकटित करते हैं उनको कहते हैं प्रभु। जैसे वो हैं वैसे प्रकृष्ट रूप में अच्छी तरह से बलिदान उस जगत में जैसे हैं ग्लोब गंडा इस जगत में उसी रूप में वो प्रकट करते हैं उसको प्रभु। ब्रह्मा जी का ये देख रहा हूं, किंतु हमको ये संदेह हुआ कि इस नराकृत रूप में रहते हुए भी आप सबके अंतर्यामी सबके हृदय में निवास करने वाले ये आप कैसे हो सकते हैं? आपने क्षण मात्र में वो संशय दूर कर दिया। कैसे? जितने सखा हैं ना, जितने बछड़े हैं, जितनी लठिया है, जितने उनके अलंकार हैं, जितने उनके स्वभाव हैं, काले गोरे जैसे हैं, जिसका जैसा स्वभाव है कृष्ण वैसे बन गए और एक बरस तक लीला करते रहे। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला जैसे कौन से ये वही है उन्होंने समझा और देखा जो कृष्ण सब लीलाएं। पहले हुआ संदेह बलदेव जी को, क्यों ऐसा हुआ? पहले कृष्ण अधिक प्यारे थे, सखा मैया अपने बेटे को आदर उतना नहीं करती थी जितनी कृष्ण को करती थी। अब देखते हैं कि कृष्ण को और अपने बच्चों को बराबर कर रही है। गैया पहले अपने बछड़ों को अधिक उतना प्यार नहीं करती कृष्ण को, किंतु अब अपने बछड़े को कृष्ण को बराबर प्यार कर रही है। ये क्यों? जब उन्होंने ध्यान लगाया देखा, अरे ये तो कृष्ण से बने हुए हैं। एक मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरता, इतना मैया बना लिया
करोड़ों मैया,
यहाँ तक कि मैया से काम नहीं चला तो गायों को भी अपनी मैया बना लिया है। अद्भुत, हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। ब्रह्मा को क्या मालूम होगा? जब बलदेव प्रभु जानन थे वो ना जानन थे, उसकी श्रेणी में जब बलदेव प्रभु भी आ गए तो ब्रह्मा अपनी बात को क्या कहे? और अपने से नीचे वाले कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी वो तो मूढ़ ही है, वो क्या थी महिमा जाने। मैं प्रभो, मैं नौ, मैं मेरा, मैं माने मेरा मन, मन सो बपु सो बाच, मैं अपने मन से बपु से और बाच से मैं कुछ नहीं समझ सकता। आप फिर शरीर को ही नहीं समझ सका, जाइए आपका वैभव शरीर जो है वो कैसा है? वो शरीर को कृष्ण ने क्या किया? चतुर्भुज दिखला दिया सबको, और उसके बाद में फिर क्या दिखलाया? जैसा था वैसे ही बच्चों को और गाय बच्चों को खोज रहे हैं और अज्ञानी बने हुए हैं, मुख सूख रहा है, कवल हाथ में ही हाथ में रहा, लेने की फुर्सत नहीं हुई, मुख सूख रहा है, किधर गए मेरे सखा, किधर हमारे बछड़े गए, एकदम भोले भाले थे। मैया घर में क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, हमारा बोधन ही सब कुछ। इस प्रकार से फिर कौल हाथ में लेकर के बंसी यहाँ पर लगी हुई है, मोर मुकुट दिया, सब सुखा ऐसे बन ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके देते हैं। प्रसंग बसता एक ये बात, उन्होंने ऐसा, वो ऐसा ही रख देते, वो फिर अपने आप जो बने हुए थे उनको छोड़ दिया और अपने आप कृष्ण बन गए और उनको निकाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्यों किया? रसास्वादन नहीं होगा उनसे, क्यों नहीं होगा? वो स्वयं है ना, वो तो लोभ से इस जगत में आए हैं आस्वादन करने के लिए। वो अपने जो बने हुए हैं उनमें वो सब भाव भर दिया है, रूप गुण सब जो स्वभाव तो बन गए, उनकी जो अपनी स्वतंत्र भावनाएं हैं कृष्ण की सेवा करने की उनमें नहीं, क्योंकि वो सब विषय जाति है ना, आश्रय जाति तो है नहीं। इसलिए कृष्ण छटपट छटपट करते हुए एक वर्ष के अंदर उनके लिए एक क्षण है, किंतु एक क्षण भी नहीं रह सके, इसलिए तो वो आए हैं आस्वादन करने के लिए। वो प्रेम अपने आप अपने से नहीं होता, इसलिए उनको बात होकर के कुछ दिनों में ही बछड़े और वो सब जो बने थे उसको हटा दिया और जो वास्तविक जो बछड़े और सखा थे उनके साथ में मिला। सब समय चिंता में मरते थे, अभाव उनको बोध होता था। जब उनके लिए रस नहीं, जैसे कि बच्चे सब दौड़ते हैं, दौड़ तो रहे हैं किंतु वो भाव नहीं, उत्सुकता नहीं है, सेवा की भावना नहीं, वैसी यदि ऐसी होती तो महाप्रभु जी कृष्ण जी राधा जी का भाव लेकर के तप के वहां पे गए। राधा जी के भाव और अंग कांति लेकर के इस जगत में आए। रसा साधन राधा जी का भाव लेने की क्या जरूरत है, तो अपने रूप से वो समझ जाते, इसलिए ऐसा नहीं होगा। राधा जी का अपना ही महत्व है। कृष्ण यदि राधा जी बन जाएंगे तो भी उनमें नहीं होगा, उनका भाव पूरा नहीं आएगा। इसलिए उन बच्चों में जो स्वाभाविक भाव उनमें नहीं है, इसलिए उसके साधन करने के लिए फिर से उन्होंने उनको प्रकट कर दिया और अपने रूप को संभाल लिया। भगवान तो विषय है ना, इसलिए आश्रय का रूप यदि ले भी लेंगे। राधिका जी कृष्ण महाप्रभु जी बने हुए हैं, बने हैं असाधन का, किंतु राधा जी के जो अंदर में जो भाव है वो कृष्ण बने हुए होने पर भी उनमें ना जा मुश्किल है। इधर राधा जी निगरानी रख रही हैं, ये हमारे भाव का ये अभिनय ठीक कर रहा है, इसे गदाधर के रूप में खड़े होकर के वो सब वाच कर रहे हैं, गलती कर सकते हैं, हो सकता है कभी अधिक कर लेंगे। राधा जी ने कहा जी हमारे जैसा मान करो, तो कृष्ण गड़बड़ा गए, उन्होंने ऐसा मान किया जब फिर वो मान में वो प्रसन्न नहीं हो गए, कह दिए तो राधिका जी कहते ऐसा तो हमारे अंदर का भाव नहीं है, मैं तो मान जाती हूँ तुम अब मानते नहीं, इसलिए तुम्हारा आर्टिफिशियल ये मालूम हो जाएगा।
आपने एक बार बताया था जब शुक्लांबर ब्रह्मचर्य घर में महाप्रभु बरहा पीड़म कर रहे हैं, गदाधर अंदर से बोल रहे हैं बरहा पीड़म, बलदेव ने सिखा रहे हैं, आपने ऐसा बताया,
इसलिए कर रहे हैं जानते ही वो कितने सब में छिपे हुए हैं भाव